नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भावना का उत्सव मनाने के लिए चार दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ शुरू हुआ। इस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर जनवरी 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। इसी वर्ष पुनर्निर्मित मंदिर के 1951 में दोबारा खुलने की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। एक रिपोर्ट।
हर हर भोले और जय सोमनाथ की जयकार, शंखनाद और डमरुओं की गूंज से आज प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का प्रांगण शिवमय हो उठा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के मंत्रियों की उपस्थिति में 72 घंटों के लगातार अखंड ओंकार जाप के प्रारंभ के साथ आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विधिवत शुभारंभ किया गया। देश भर के शिव मंदिरों में आज एक साथ मंत्रोच्चार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राज्य के चार महानगरों से सोमनाथ के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। सोमनाथ से राजेश भजगोतर के साथ अपर्णा खुंद, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सभ्यतागत संकल्प ने सोमनाथ मंदिर के बार बार पुनर्निर्माण को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की शाश्वत सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा सोमनाथ मंदिर के महत्व पर लिखे गए लेख का जिक्र करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ऐसी आलोचनाओं का स्वागत करता है जो ठोस साक्ष्यों पर आधारित है। ऐसी आलोचनाएं सरकारी नीतियों को मजबूत बनाने और उनमें किए गए सुधारों को सहेज कर रखने में मदद करती है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक लेख का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की लोकतांत्रिक प्रगति में निराशावादी सोच की कोई जगह नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में संलिप्त संगठित गिरोह के खिलाफ देश भर में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि शुरुआत में इस घोटाले का पता भारतीय रेलवे के नाम से चला था। बाद में जांच के दौरान 40 से अधिक सरकारी संगठनों के नाम का भी खुलासा हुआ। ये तलाशी अभियान 6 राज्यों के 13 शहरों में चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमान के अनुसार आर्थिक वृद्धि दर पहले के मुकाबले अधिक रहने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है। इससे पहले यह अनुमान 7.4% का था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय में व्यापक वृद्धि की संभावना है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 कार्यक्रम कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। खेल और युवा कार्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करने, चुनौतियों का सामना करने और देश के भविष्य के निर्माण की रूपरेखा में योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र निकायों और भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल अमेरिका के हितों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से अमेरिका की सदस्यता वापस लेने शीर्षक वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने तोमोको मियाजाकी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दूसरी ओर पुरुष वर्ग में भारत के आयुष शेट्टी को पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में चीन के शी युकी से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही लक्ष्य इस वर्ग में टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में शीतलहर की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और गुजरात के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में घने से बहुत घने कोहरे का पूर्वानुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।